हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राव्या तेज कदमों से अपने कमरे में पहुंची, जहां अनंत अभी भी अपनी लैपटॉप में उलझा हुआ था। राव्या ने उसे ऐसे देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, तुम कैसे पति हो यार, वहां किचन में मैं अकेले खाना बना रही थी और तुम यहां सिर्फ लैपटॉप पर ही लगे हुए हो। आई एम सो डिसअपॉइंटेड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी माताश्री मुझ पर कितने हुक्म चलाती हैं? इतने हुक्म तो कभी मेरी आंटी ने भी नहीं चलाए, जो मुझे इस दुनिया में सबसे बुरी लगती हैं। उन्होंने भी मुझे घर का काम नहीं करवाया है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अनंत ने जब कुछ देर तक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो राव्या ने चलते हुए कहा, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर इस बार अनंत का ध्यान लैपटॉप से हटकर उसकी तरफ आया। उसने देखा राव्या मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। उसकी छोटी सी नाक गुस्से में लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रोने लग जाएगी। उसके माथे पर आटा लगा हुआ था और पसीने से कुछ बाल उसके गाल पर ही चिपक गए थे। अनंत एक गहरी सांस भरते हुए अपनी जगह से उठा और फिर तेज कदमों से उसके पास जाकर उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम जब तक मेरे पास मेरे कमरे में रहोगी तब तक मॉम तुम्हें कोई काम नहीं देंगी, लेकिन अगर तुम नीचे जाओगी तब उनके अंदर सांस वाली आत्मा घुस जाती है और वो तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहती है, तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। अनाही भाभी की वजह से उनके दिमाग में अच्छी बहू की वैसे ही छवि बन गई है। क्या तो तुम खाना बनाना सीख लो या फिर तुम मेरे बिना नीचे मत जाया करो, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना बोलकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर राव्या के माथे पर लगा आटा पोंछा। राव्या एक झटके से उसके गले लगते हुए बोली, क्या बिना खाना बनाए मैं अच्छी बहू नहीं बन सकती हूँ? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जो खाना बनाता है वही अच्छी बहू होती है? और फिर एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या कोर्स, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि जो अच्छा खाना बनाती है वही अच्छी बहू होती है। तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मॉम की सोच ऐसी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गहरी सांस ली और फिर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इतनी देर काम करके वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और राव्या का ऐसे गले लगना उसे बहुत सुकून पहुंचा रहा था। किचन में अब खाना बनाने के बाद अनाही डिनर सर्व कर रही थी, क्योंकि राव्या अभी तक वापस नहीं आई थी। मोहन अब उसकी हेल्प कर रहा था। ये देखकर अनाही की स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। जो लड़का पहले घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं रखता था, अब उसे डिनर लगाने में भी कितना मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। भगवान को एक्चुअली काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस अनाही का साथ अच्छा लग रहा था। उसका बस चलता तो वो 24 घंटे के हर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ अनाही के साथ ही रहता। वहीं हॉल में निवेदिता सोफे पर बैठी उन दोनों को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। आखिरकार अनाही ने अपना वादा पूरा कर ही दिया था कि वो एक ना एक दिन रूहान को फैमिली में घुलने मिलने पर मजबूर कर देगी। अब उन्हें इंतज़ार था कि एक ना एक दिन रूहान उनसे भी प्यार से बात करेगा, अजनबियों की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल माँ बेटे की तरह। पता नहीं निवेदिता का ये ख्वाब कब पूरा होने वाला था। उसने अपने मन में कहा, बस मेरे मरने से पहले मैं एक बार रूहान से मॉम सुनना चाहती हूँ, वो मुझे अपनी माँ कहकर बुलाए और एक बार प्यार से मेरे गले लग जाए, उसके बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठ चुके थे। वहाँ बाकी सब मौजूद थी लेकिन माधवी, वीहा और वेदांत नहीं। वीहा तो अपने कमरे में एक के ड्रामा देख रही थी, तो वहीं वेदांत बेचारा वीहा के लिए किचन में खाना बना रहा था। उसने किचन स्लैब पर अपना फ़ोन रखा था जिसमें यूट्यूब वीडियो चल रहा था और वो किसी खान की रेसिपी बता रहा था। वेदांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ये तो सच में बहुत मुश्किल है, मुझे तो लगा था जिस तरीके से मॉम ये बताती हैं ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन सिर्फ मेरा वो हेमे टमाटो तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और ख़ुद को मोटिवेट करते हुए खाना बनाने लगा। वहीं खाना खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। तब रूहान की नज़र इस बात पर गई कि आज माधवी खाने पर नहीं आई थी, क्योंकि अब उसकी मैडम जी उसकी नज़रों के सामने नहीं थी। अनाही किचन में वेदांत की हेल्प करने गई थी, इसलिए भगवान की नज़रें बाकी लोगों पर गई थी। उसने जल्दी से जिग्नेश को रोकते हुए पूछा, आज बड़ी मॉम क्यों नहीं आई? बड़े पापा, कुछ हुआ है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जिग्नेश को याद आया कि माधवी ने उससे कहा था जैसे ही रूहान पूछे उसे तुरंत बता देना कि आज माधवी का मूड खराब है, किसी ने उसके इस घर में इज्जत नहीं की है। जिग्नेश को वैसे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जिस तरीके से कहा था वैसा कहना भी उसे पड़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के गुस्से से बहुत डर लगता है। जिग्नेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो बोल रही थी कि इस घर में अब उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो वो अब सब लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी, और बोल रही थी उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना भी है और भी पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है आज उसका मूड खराब है, जब ठीक हो जाएगा तब वो सबके साथ बैठकर खाना खाने आ जाएगी। उसकी बकवास बातों पर वैसे तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उसने कहा था कि रूहान पूछे तो उसे ज़रूर बताना, बाकी लोग तो मुझे अपना नहीं समझते हैं लेकिन मेरा रूहान मुझे बहुत मानता है। निवेदिता ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से बोली, ऐसा कब हुआ भाई साहब? आपने इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा कि जीजी को आज डिनर हमारे साथ नहीं करना है। मैंने तो एक नौकर से भी कहा था कि डिनर ऊपर देकर आना। इतना बोलकर निवेदिता ने पीछे मुड़कर किचन की तरफ देखा और आवाज लगाई, शर्मिला क्या तुम ऊपर डिनर नहीं देकर आई हो? शर्मिला जोशी सर्वेंट कोटा की तरफ जा ही रही थी। उसने जल्दी से कहा, मैं खाना देने गई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं खाना वापस ले आई। वहीं जिग्नेश ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं है, उसका मूड खराब है ना, बस इसीलिए खाना नहीं खा रही है, कल तक ठीक हो जाएगी। आप सब लोग इतने परेशान मत होइए और अपने कमरों में जाकर रेस्ट करिए। राविया और अनंत भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर माधवी की डिसरिस्पेक्ट किसने की है। अनंत ने धीरे से पूछते हुए कहा, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा मॉम से? देखो अगर ऐसा है तो मुझे जाकर सीधा सीधा सॉरी बोल दो, क्योंकि उनका गुस्सा जल्दी से खत्म नहीं होता है और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक गलती करने वाला उनसे माफी ना मांग ले। क्या तुम्हारी उनसे कोई बहस हुई थी? राविया ने याद किया लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया जहां उसकी और माधवी की कोई लड़ाई हुई हो। उसने जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मेरी उनसे कोई बहस नहीं हुई है, आज तो उन्होंने जो जो कहा था मैंने वो सब किया था। जब अनाही आई थी तभी तो मैं कमरे में आई थी, वरना तो तुम्हें भी पता है ना मैं पूरा दिन तो नीचे थी। इतना बोलकर राविया ने उसे नाराजगी से देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, तुम हर बार मुझ पर ही क्यों शक करते हो? तुम याद करो कहीं तुम खुद तो नहीं लड़े उनसे? अनंत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं लड़ा क्योंकि मैं भी पूरा दिन कमरे के अंदर बिजी था, मैं भी बाहर नहीं आया। फिर किसने उनकी इंसल्ट की होगी और वो भी इतनी ज्यादा कि उन्होंने सीधा खाना ही छोड़ दिया और घर छोड़ने तक बात आ गई।
पूरे परिवार की खुसर फुसर चालू हो चुकी थी, पूरे घर में सिर्फ माधवी की बातें हो रही थी और माधवी तो जैसे चाहती ही यही थी।